Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ततश्चिरं मदोक्षजार्चितम् पूर्तेश्च दत्तम् उत भूतसुहृदम् पूर्तेश्च दत्तम् उत भूतसुहृदम् पूर्तेश्च दत्तम् उत भूतसुहृदम् यस्तं परेत पुनरेव बालको यत्संपरेत पुनरेव बालको दृष्ट्या स बन्धून् प्रणयन्नुपस्थितः दृष्ट्या स बन्धून् प्रणयन्नुपस्थितः तपश्चेष्टिमदोक्षजार्चनम् किं न तपश्चेर्णमदोक्षजार्चनम् पूर्तेश्च दत्तमुत भूतसौहृदम् पूर्तेश्च दत्तमुत भूतसौहृदम् यत्संपरेत पुनरेव बालको यत्संपरेत पुनरेव बालको दिष्ट्या स बन्धून् प्रणयन्नुपस्थितः दिष्ट्या स बन्धून् प्रणयन्नुपस्थितः दत्तं कभूतसौहृदम् यत्तं परेत पुनरेव बालको दृष्ट्या स्वबन्धून् प्रणयन्नुपस्थिता
माताजि
नमः ಸುಪಶೇಜಾರ್ಚನ ಪುತ್ರೇ ದತ್ತಸೂತಸೌಹೃದ ಸಂಪರೇತ ಪುನರೇವ ಬಾಲಕೋ ಶಿಷ್ಯಾ ಸ್ವಬಂಧೋಂ ಪ್ರಣಯಾನುಪಸ್ಥಿತಃ ಚಿನ್ನ ತಪಸ್ಯಂ ಮದೋಕ್ಷಜಮಾಪ್ಸಿತಂ ತತ್ವಂ ಉತಭೂತ ಸೌಹೃದಂ ಸಂಪರೇತ ಪುನರೇವ ಬಾಲಕೋ ಉಪಸ್ಥಿತ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೈ ಕಿಂ ಇಸ್ ತರಹ ಕಿ ನಾ ಹಮಾರೆ ದ್ವಾರಾ ತಪಃ ತಪಸ್ಯಾ ಚೀರ್ಣಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಕ್ ಕಿ ಗೈ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅರ್ಚನ ಪೂಜಾ ಪೂರ್ತ ಸಡಕೆ ಬನಾನಾ ಆದಿ ಇಷ್ಟ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯ ದತ್ತಂ ದಾನ್ ದೇನ ಉತ ಅಥವಾ ಔರ್ ಕುಚ್ ಭೂತ ಸೌಹೃದಂ ಜನತಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇಮ ಜನತಾಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೇಮ ಹೋನೆಸೆ ಯತ್ ಜಿಸ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಂಪರೇತಃ ಮೃತ್ಯು ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋನೆ ಪರ್ ಭೀ ಪುನಃ ಪುನಃ ಏವ ಫಿರ್ ಸೆ ಅಪ್ನೆ ಪುಣ್ಯೋ ಕೆ ಕಾರಣ ಬಾಲಕಃ ಬಾಲಕ ದಿಷ್ಟ್ಯಾ ಭಾಗ್ಯ ದ್ವಾರ ಸ್ವಬಂಧುನಂ ಸ್ವಬಂಧುನ್ ಜಿಸ್ಕಿ ಸಂಬಂಧಿಯೋ ಕೋ ಪ್ರಣಯನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕರ್ನೆ ಕೆಲಿಯೇ ಉಪಸ್ಥಿತಃ ಯಹಾ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೈ ಅನುವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಜ್ವಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಸ್ ಎ ಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಕೇ ದ್ವಾರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಾಯ ಅನುವಾದ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಕಾ ಅನ್ಯ ಲೋಗೋ ನೆ ಕಹಾ ಹಮ್ನೆ ಅವಶ್ಯ ಹೀ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಮೇ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಕ್ ತಪಸ್ಯಾ ಕಿ ಹೋಗಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಪೂಜಾ ಕಿ ಹೋಗಿ ಜನತಾ ಕೆ ಲಿಯೇ ಸಡಕ್ ತಥಾ ಕುವೆಂ ಬನಾಕರ್ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಕಿಯೇ ಹೋಂಗೆ ಔರ್ ದಾನ್ ಭೀ ದಿಯೇ ಹೋಂಗೆ ಜಿಸ್ಕೆ ಫಲಸ್ವರೂಪ ಮೃತ್ಯು ಕೆ ಮುಖ ಮೇ ಗಯಾ ಹುವಾ ಯಹ ಬಾಲಕ್ ಅಪ್ನೆ ಸಂಬಂಧಿಯೋ ಕೋ ಆನಂದ ಪ್ರದಾನ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಲೌಟ್ ಆಯಾ ಹೈ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ನೇ ಪುಷ್ಟಿ ಕೀ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮೋ ಸೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧು ಬನ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಜಿಸ್ಸೆ ವರ್ ಮೇ ಸುಖಿ ರಹ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಕಿ ಬಾಲ ಬಚ್ಚೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರಹ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಕರ್ಮಿಯೋ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಿಯೋ ಕೆ ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷತಯಾ ಕರ್ಮಿಯೋ ಕೆ ಲಿಯೇ ಉನ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಉನ್ಕೆ ಅನೇಕ ಆದೇಶ ಹೈ ಜಿಸ್ಮೇ ವ ಪವಿತ್ರ ಬನ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಔರ್ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಮೇ ಭೀ ಸುಖಿ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಭೌತಿಕ ಸಭ್ಯತಾ ಹೈ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಮನುಷ್ಯ ಕೋ ಚಾಹಿಯೇ ಕಿ ಜನತಾ ಕೆ ಲಾಭ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯ ಕರೆ ತಥಾ ಸಡಕೆ ಬನಾಯೆ ಸಡಕೋ के दोनों ओर वृक्ष लगाए जिससे लोग छाया में चल सके। सार्वजनिक कुएं खुदाए जिससे हरेक को बिना किसी कठिनाई से जल मिल सके। अपनी इच्छाओं को वश में रखने के लिए मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए और उसी के साथ साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस तरह वह पवित्र बन जाता है और उसी के फलस्वरूप वह भौतिक जीवन में भी सुखी हो सकता है। तुम अज्ञात विराम दस्य ज्ञान जनशनाथ शिक्षण मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतावदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्चैव श्रीरूपं साग्रजातं सहग्र रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणनृता शिवशादान्वितांश्च श्रीकृष्णकर्णा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पति गोपेश गोपिकान्तराधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यै च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। अभी जो प्रसंग चल रहा है त्रिनावत का उद्धार, खास करके भगवान श्री कृष्ण के ये जो कौमार अवस्था की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का मुख्य विषय वस्तु ये है कि भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति और रजवासियों का वात्सल्य के बीच में एक प्रतियोगिता, एक कंपटीशन, कौन जीतेगा। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति जीतेगी या व्रजवासियों का विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस जीतेगा। एक ऐसा दिखाई पड़ता है प्रतियोगिता करके दोनों में कौन श्रेष्ठता अपना को स्थापना करेगा। बार बार भगवान की ऐश्वर्य शक्ति दिखाई पड़ता है, अभी बस मैं ऐश्वर्य को स्थापना करने वाली हूँ, भगवान श्री कृष्ण भगवान है और वो अद्भुत कार्य करते हैं और उनके बराबर कोई नहीं है। अनेक उन कृष्ण के ऐश्वर्यों को प्रकाशित करने के लिए ऐश्वर्य शक्ति तत्पर रहती है, जितना तत्पर होती है उतना विफल हो जाती है। दूसरे शब्दों में पूरा भगवान श्री कृष्ण की जो कौमार अवस्था की लीलाएं हैं वो लीलाओं का विशेष बात यह है कि ऐश्वर्य शक्ति सहयोग देती है। मान लीजिए कुछ प्रतियोगिता होता है, प्रतियोगिता में क्या होता है, मान लीजिए बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, वो सारे जगत में माननीय है, लेकिन अगर वो किसी के सामने हार जाता है तो जो जिसने हराया उसकी महत्ता जो है वो प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकार यशोदा माई का, नंद महाराज का, अन्य ब्रजवासियों का जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य है उसकी महत्ता को पुष्ट करने के लिए अनेकों इस प्रकार की घटनाएं, पूतना का वध हो, तनावत का उद्धार हो, शकटासुर का हो, कुछ भी हो, जो भी जितने भी असुरों का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया वो केवल उनके ऐश्वर्य का प्रकाशन क्या होता है, उनकी वात्सल्य को पुष्ट करने के लिए है। ये मूल बात है। अभी त्रिनावत का उद्धार में हमने सुना त्रिनावत मर गया, ऊपर से नीचे गिरा और पत्थर के ऊपर उनका सर वर लगा, उसका चूर चूर हो गया और कृष्ण छाती के ऊपर खेल रहे, आराम से बैठे खेल रहे। पिछले के पिछले श्लोक में हमने देखा कि गोपियां तुरंत गई और जाके उसको बालक को उठा के यशोदा माई को दी, और पिछले श्लोक में हमने ये शब्द सुना, अहो अहो बता, अहो बत अति अद्भुतम, अहो बत अति अद्भुतम, येष राक्षस बाल निवृत्तिम। ये बड़ा अद्भुत चीज है, ये राक्षस ने, येष राक्षस, ये राक्षस ने क्या किया, ये बालक को पूरा ऊपर तक लेके गया और जब एकदम नीचे गिर पड़ा, इतना ऊपर से बालक गिरने के बाद भी कुछ भी नहीं हो उसका, ये उनके मन में ये जो अद्भुत रस है उसका आस्वादन हुआ। ये क्या है, अद्भुत अस्टानिशमेंट। पिछली बार आपको याद होगा कि अद्भुत रस के बारे में चर्चा किया था, ये साक्षात डायरेक्ट एक्सपीरियंस दिखाई पड़ रहा है भक्तों को कृष्ण का ये अद्भुत लीला। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे चीजें चर्चा किया था, चार पचार प्रकार का अद्भुत रस के विषय में। अभी इधर भगवान श्री कृष्ण साक्षात इधर दिखाई पड़ रहे सब भक्तों की, इतना ऊपर जाके नीचे गिर पड़ा, राक्षस मर गया लेकिन बालक कुछ नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए कि बालक मर जाना चाहिए लेकिन राक्षस नहीं होना, कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इधर उल्टा हुआ, इतना ऊपर जाने के बाद भी दोनों नीचे गए साथ में, लेकिन एक मर गया दूसरे को चोट भी नहीं लगा, आराम से बैठा है। एक ऐसे ही की बात है, अद्भुत है। जैसे कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति प्रकट होता है या अपनी लीला संपन्न करती हैं, तो तुरंत क्या होता है, भक्तों के हृदय में अद्भुत रस का आस्वादन होता है। लेकिन यह बात ध्यान में रखना चाहिए, अद्भुत रस अगर ज्यादा समय रहा तो क्या हो जाएगा, कृष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो यह अद्भुत रस जो है कुछ समय के लिए आता है, यह अद्भुत रस अगर थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए रहे, अगर भगवान की जो जो लीला शक्ति थोड़ा सा देर कर दे, लीला शक्ति अपने कार्यों को संपन्न कराने में थोड़ा सा देर कर दे, नंद महाराज ब्रजवासी सब लोग सोचने लग जाएंगे क्या कृष्ण भगवान है। अभी कृष्ण ये ब्रजवासियों को बुलाना है, क्या बुलाना है, कृष्ण भगवान है। तो ये बुलाने का कार्य योग माया करती है। वैसे जो है कृष्ण भगवान ही करके बुलाने का कार्य जो है इस जगत पे महामाया करती है हमारे ऊपर। तो ऐसा कौन सा चीज है और कौन सा आवरण के द्वारा हम भूल जाते कृष्ण भगवान है, वो है कर्म और ज्ञान का आवरण। कर्म का आवरण और ज्ञान का आवरण के द्वारा हम भूल जाते कृष्ण भगवान है। भले कृष्ण के सामने आने के बाद भी हम कृष्ण भगवान है करके हम स्वीकार नहीं कर पाते। तो आध्यात्मिक जगत में या कृष्ण लीलाओं के अंतर्गत जब योग माया आवरण करती है, किसका आवरण करती है, जब ब्रजवासियों का आवरण कर देती है, कार्य क्या है योग माया का, वही कार्य है जो महामाया का है। क्या कार्य है, इनको बुला देना चाहिए कृष्ण भगवान है करके। अगर उनको मालूम पड़ेगा कृष्ण भगवान है करके, तो यशोदा बाई नंद महाराज अन्य गोपियों को, तो उनका विशुद्ध वात्सल्य रस का आस्वादन नहीं हो पाएगा, और उनके अंदर विशुद्ध वात्सल्य रस इतना प्रबल है, इतना स्ट्रांग है, इतना तीव्र है, वो योग माया ऐसा करा देती है कि उनको बुला देती है ताकि उनका वात्सल्य रस का आस्वादन हो पाए। इसलिए पिछले श्लोक में दो जो पहला लाइन है उसके अंदर अद्भुत रस का आस्वादन हो रहा है, यानी दूसरे शब्दों में अहो अहो बत अद्भुत येष राक्षस बाल निवृत्ति गमतो अभ्यघात पुनः। उनका आश्चर्य के बाद क्या था, अभ्यघात पुनः निवृत्तिम अभ्यघात पुनः। तो इधर शब्द क्या है, निवृत्तिम शब्द इस्तेमाल किया गया। निवृत्तिम का अर्थ क्या है, मृत्यु, मृत्यु को निवृत्ति कहा जाता है, लेकिन मृत्यु शब्द इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि थोड़ा अशुभ है, क्योंकि लीला आस्वादन में थोड़ा सा रुकावट पहुंचा सकता है, क्योंकि मृत्यु शब्द अशुभ होने की वजह से निवृत्तिम इस्तेमाल किया गया। श्री विश्वनाथ ठाकुर इस प्रकार इस्तेमाल कहते हैं निवृत्तिम अभ्यगात पुनः। तो ये अद्भुत है, अद्भुतता क्या है, मृत्यु के नजदीक में गया, यानी निवृत्त होने वाला था, मतलब गायब होने वाला था बाय बालक, हमारे नजर से निकलने वाला था, लेकिन अभी अभ्यास वापस आ गया, एकदम बिल्कुल वैसा का वैसा, कुछ तकलीफ नहीं हुआ। ये अद्भुत रस का वर्णन दो लाइन में हुआ है पिछले श्लोक में। अभी जैसे अद्भुत रस प्रकट हुआ, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, हो सकता है ये भगवान है कि नहीं, अगर थोड़ा लंबा समय छोड़ दिया जाए, ये अद्भुत रस जो है आस्वादन करते करते थोड़ा सा होश में आएंगे। अद्भुत मत क्या है, हमारा होश खो जाता है, तो होश आ जाए तो समझ में आएगा अच्छा ये कार्य केवल भगवान की हो सकता है, कृष्ण भगवान है तो इससे हम उनको प्रणाम करना चाहिए, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करती है योग माया, ऐसा कार्य करती है कि उनको बुला देती है। किनको बुला देती है, ये ब्रजवासियों को बुला देती है कि कृष्ण भगवान है। तो जैसे इस भौतिक जगत में महामाया भुला देती है हमको, किसके द्वारा, कर्म और ज्ञान के द्वारा हमको भुला देती है कृष्ण भगवान है, उसी प्रकार योग माया क्या करते हैं व्रजवासियों को भी वो दिव्य कर्म दिव्य ज्ञान के द्वारा आवरण करा देती है। यानी ये व्रजवासी भी कर्म और ज्ञान की बातें कहने लग जाएंगे। पिछले श्लोक में जो बाकी दो लाइन है उसमें ज्ञान की बातें कहा गया है, ज्ञान की बातें क्या कहा गया है, हिंसरा करते जो हिंसा करता है, जो ईर्ष्यालु रहता है वो पापी होता है, पापकारी करता है। हिंसरा स्वपापेरा विन विस्पिता विन विन विंसिता विंसिता कलह, ऐसा कहा गया है कि ये जो पाप है ना, सब पाप है ना, अपने पाप के द्वारा ही मारा गया है, ये कलह पापी व्यक्ति है। और दूसरी बात क्या है, साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते, जो साधु पुरुष होते हैं ना अपने पुण्य कार्यों के द्वारा वो क्या करते हैं, समत्वेन, उनका सम दृष्टिकोण रहता है, उनका कोई ना ना शत्रु है ना मित्र है। वैसे साधु लोग होते हैं ना वो अनेकों अनेकों प्रकार के जो भय है उन सबसे वो मुक्त हो जाते हैं। तो इधर ये दो लाइन जो है, पिछले श्लोक का दो लाइन जो है वो अस्तित्व में ये किसने कहा, ये दो लाइन में भी लाइन भी उधर के ब्रजवासियों ने कहा। तो ब्रजवासी क्या कर रहे हैं, अस्तित्व में साधु होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, भक्त होते हैं, यानी ये संबोधित कर रहे कृष्ण को, कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, ये साधु होते हैं महान अच्छे लोग होते हैं ना, यानी कृष्ण को भी वो क्या सोच रहे हैं, एक अच्छा व्यक्ति है, आपने पुण्य किया होगा बहुत सारे कृष्ण बहुत अच्छा पुण्य किया होगा पिछले जन्म में, तो इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं ये दैव बला दैवी की वजह से दिव्य योजना से उनको कुछ नहीं होता, कोई चीज का डर नहीं रहता। ये देखो कृष्ण जो है एकदम निर्भय है, क्यों निर्भय है, क्योंकि भले ही ये जो असुर है कृष्ण के प्रति आया था वो मारने के लिए, लेकिन साधु लोग होते ना उनके लिए कोई मित्र या शत्रु इस प्रकार की भावना ही नहीं रहता है, इसलिए कृष्ण हमेशा उसका यानी भगवान हमेशा उनको रक्षा करेंगे। यानी सामने कृष्ण है भगवान है लेकिन क्या सोच रहे, कोई और भगवान है कहीं, वो कृष्ण को रक्षा कर रहे, क्यों, कृष्ण एक साधु है, कृष्ण एक साधु होने की वजह से उनको रक्षा। और ये जो राक्षस है ना उसको कृष्ण ने नहीं मारा, कौन मारा, सब पापे ना, उनका पाप किया था एक खलौर, वो पाप की वजह से अपने आप मरता है व्यक्ति, जो पापी व्यक्ति होता है दुष्ट व्यक्ति होता है उनको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका पाप ही उनको मार देता है। क्योंकि एक व्यक्ति को मित्र समझता है, दूसरे व्यक्ति को दुश्मन समझता है, इसके वजह से अनेकों प्रकार के पाप करता है, कलह वो पाप ही उसको मार देता है, हमको उसको मारने की जरूरत नहीं है। जैसे ये बच्चा है उसको मारा ही नहीं, अपने पाप से मर गया, ऐसा हो सकता है कि ये बच्चा इतना बड़ा राक्षस को मारे, ये नहीं हो सकता है। ये राक्षस जो अपने पाप से मरा और हमारा जो पुत्र है जो साधु है बहुत अच्छा व्यक्ति है, अच्छा बच्चा है, अच्छा बालक है, वो भगवान की दैव योजना से पुण्य ने उनको क्या किया, उनको उनको रक्षा किया, आपने तृणावर्त को मारा और पुण्य ने कृष्ण को रक्षा किया। अभी इस प्रकार ये ज्ञान का आवरण के द्वारा क्या हुआ, ये व्रजवासियों का विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस का प्रकाशित हो रहा है। जो ज्ञान का आवरण हमको भक्ति करने नहीं देती है अभी इधर प्रेम रस का आस्वादन करा रही है, क्यों, क्योंकि वो माया जो है कौन सा है, योग माया है। इधर क्या वही माया महामाया करती है तो हमको बुला देती है, भक्ति करने नहीं देती है, लेकिन वही ज्ञान का आवरण उनकी भक्ति का रस का आस्वादन करने करा रही है। अब ये श्लोक का सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, ये श्लोक का विषय है वो कर्म का आवरण के द्वारा उनकी वात्सल्य प्रेम रस का प्रकाश हो रहा है। तो कर्म का आवरण का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। तो किम न तपः चिरम अधोक्षजार्चितम उत्प्रेष्ट दत्तम उत भूत सौहृदम। उत भूत सौहृदम, ये उता शब्द के द्वारा उता का अर्थ है कि ऐसा उन लोगों ने कहा। उत भूत सौहृदम, ऐसा सोचने लगे ऐसा नहीं होगा, यानी कर्म का आवरण नहीं होगा। या पिछले श्लोक में एक सिद्धांत को स्थापना किया गया है, एक प्रकार की जो चर्चा किए थे कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने सोचा ऐसा नहीं होगा तो कुछ और हो सकता है। क्या है? हो सकता है कि हम अपने बारे में बोल रहे हैं। अभी कृष्ण के बारे में बताए, तृणावर्त के बारे में बताए, हो सकता तृणावर्त जो है अपनी पाप से वो मर गया, कृष्ण जो है क्या हुआ उनका ये जो पुण्य से वो जीवित रह गया। अभी वो अपने बारे में बता रहे, अपने सौभाग्य के विषय में कहते हैं कि उता, ये अपने बारे में कहते हैं। खास करके नंद महाराज और इत्यादि अन्य लोग थे, वो कहते हैं किम नस्त, ऐसा लगता है कि ऐसा को प्रतीत है कि जो व्यक्ति बहुत तपस्या किया हो, एक दूसरा तपस्या चिरम, चिरम मतलब बहुत अनेकों साल तक तपस्या किया हो एक व्यक्ति, दूसरा पुत्रेष्ट दत्तम उदभूत सौहृदम, भूत सौहृदम जीवों के प्रति अति दया से अति करुणा से वो लोगों ने क्या किया होगा। पुत्रेष्ट दत्तम, पुत्रेष्ट पुत्रेष्ट करते हैं कि बहुत सारे सड़क बनाना या कुछ रोड के पेड़ वगैरह इत्यादि लगाना और कुछ कुआं खोदना, तो बाद में कुछ दान धर्म करना, तो कुछ दान धर्म किए होंगे या कुछ समाज के हित के लिए कार्य किए होंगे, ये किए होंगे, हम लोगों ने बहुत किया होगा पिछले जन्म में, इसलिए क्या हुआ भूत सौहृदम, सबको हमने समान दृष्टिकोण से देख के सबके प्रति भाव, और साथ साथ में हमने क्या किया होगा, हमने साथ साथ में अधोक्षजार्चितम भगवान को भी पूजा किए होंगे हम लोग, इसलिए यत्संपरेत पुनरेव बालको। तो क्या हुआ यत्संपरेत पुनरेव बालको, यत्संपरेत वापस उसी बात को कहते हैं, ये बालक तो ऑलमोस्ट मरी गया था, संपरेत पुनरेव बालको दिष्ट्या स्वबंधून प्रायन उपस्थितः। तो हमारे प्रसन्नता के लिए, हमको सुख प्रदान करने के लिए क्या हुआ पुनरेव बालको दिष्ट्या, दिष्ट्या ये शब्द का अर्थ है पुनरेव बालको, यत् संपरेत पुनरेव बालको बालका दिष्ट्या, हमारा बड़ा सौभाग्य है। ये दिष्ट्या शब्द हमारे पुण्य को सूचित करता है, हमारे बड़े पुण्य किए, हमारे पुण्य की वजह से स्वबंधु प्रणयन उपस्थिता, हमको प्रसन्न करने के लिए, प्रणयन मतलब हमको बड़े प्रेम से हमको आनंद प्रदान करने के लिए पुनरेव वापस उपस्थिता हमारे सामने वापस प्रकट हो गया। तभी ये श्लोक को थोड़ा सा हम चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। पहला बात तो है श्लोक का प्रसंग मालूम होना चाहिए। प्रसंग क्या है? अभी ज्ञान का आवरण की वजह से विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस का आस्वादन कराने में योग माया सफल हो गई। अभी कर्म का आवरण से कुछ लोगों को वही वात्सल्य प्रेम रस को आस्वादन करा रही है योग माया शक्ति। तो कैसे करा रही है? तो इस श्लोक में ये कर्म की बात हो रही है। वैसे देखा जाए ये जो ब्रजवासी जो है वो कर्म और ज्ञान से परे नहीं, बल्कि वो साधना और भाव भक्ति से परे प्रेम भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा भक्ति रसानंद में वर्णन हुआ है कि कर्म के द्वारा कोई भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, ना ज्ञान के द्वारा भक्ति प्राप्त कर सकता है, उल्टा ये दोनों आवरण है भक्ति के लिए। तो कोई अगर कहें हमने पुण्य किया तो हमको भक्ति मिला, ये गलत सिद्धांत है। अगर पुण्य करने की वजह से भक्ति मिलता तो जो भारत में बहुत सारे पुण्यवान लोग हैं उनको भक्ति मिलना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उधर सब लोग थे पापी लोग थे, गाय का मांस खाने वाले थे, वे विचार करने वाले थे, उनको भक्ति कैसे मिला? तो भक्ति भक्ति से उत्पन्न होता है, कर्म से ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन इधर रजवा की अस्तित्व देखा जाए एक प्रकार गलत सिद्धांत बोल रहे हैं। बोलते हैं कि हमने बहुत सारा पुण्य किया होगा इसलिए ये बालक हमारे पास आ गया, लेकिन बात ये नहीं है। ये जो है कर्म का आवरण है जो ये लोग ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, वो ये पता लग जाएगा कृष्ण भगवान है और कृष्ण को प्रणाम करने लग जाएंगे, वो जो वात्सल्य रस का आस्वादन नहीं हो पाएगा। वात्सल्य रस का अर्थ क्या है, मैं कृष्ण को, कृष्ण का पिता हूँ, मैं कृष्ण की माँ हूँ, उनको देखभाल करना चाहिए, उनका रक्षा करना चाहिए। तो अगर मालूम पड़े कृष्ण भगवान है वो सारे जगत को रक्षा करने वाले, उनको कौन रक्षा करेगा, रक्षा करने नहीं जाएंगे। तो ये जो कृष्ण मेरे ऊपर निर्भर करते हैं तो कृष्ण को देखभाल करना है, ये भावना को सुरक्षित करने के लिए ये योग माया उनको बुला देती है। अभी कर्म के आवरण के द्वारा बुला रही है। सबसे पहला क्या कहा है कि न तपस तपस, ये कर्म भी जो है वो कैसा होता है कि वो भी राजसिक होता है, तमसिक होता है, और राजसिक और तमसिक होता है, और साथ साथ में वो सात्विक भी होता है कर्म। जो तमसिक कर्म जिसको खा जाता है कर्म के अंदर, वो जो क्या करता है वो अपनी बलबूते मैं उस कर्म का फल को प्राप्त करना चाहता हूँ, वो लोग तपस्या ज्यादा करते हैं। कुछ चीज की प्राप्ति के लिए तपस्या के द्वारा अपने बलबूते मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ हासिल करूंगा, ये भावना जो है थोड़ा सा तमसिक है। नहीं, मैं कुछ अन्यों को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा दान धर्म इत्यादि करूंगा, उन सबको मैं खुश करूंगा, अन्य लोगों को सुख सुविधा प्रदान करूंगा, कुछ दान दूंगा, इसके द्वारा मुझे सुख मिलता है, राजसिक माना जाता है। और कुछ लोग सोचते हैं ठीक है थोड़ा बहुत हम भगवान का ही पूजा कर लेंगे तो उसको तो सात्विक कर्म कहा जाता है। वैसे भगवान की जो पूजा जो है वो दिव्य है, लेकिन फिर भी जो कर्म प्रवृत्त होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए करेंगे, ये सात्विक माना जाता है। जैसे जो इस जगत में या भारत में खास करके कुछ ऐसे कर्मी हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम कर्म का फल प्राप्त करना है, हमने अच्छा काम किया तो थोड़ा बहुत हम भगवान की भी पूजा कर लेंगे। यानी उनका मुख्य उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, लेकिन उनको ये बात मालूम है कर्म फल तभी दे सकता है जब भगवान की पूजा हो। यानी भक्ति के बिना कर्म भी अपना फल नहीं देता है। तो ये जो बात जानते हैं उसको सात्विक कर्मी कहा जाता है। तो ऐसा है कि भक्ति भी अनेक प्रकार का है, लेकिन कुछ एक प्रकार का भक्ति है जिसको कहा जाता है असत्य, वो भक्ति नहीं है, इसको भक्ति मिश्र कर्म कहा जाता है। भक्ति मिश्र कर्म का अर्थ क्या है, अस्तित्व में वो कर्म है लेकिन वो जो जानते हैं मेरा कर्म का फल तभी मिलेगा जब मैं भक्ति करूंगा, इस चीज को भक्ति मिश्र कर्म कहा जाता है। तो इस हिसाब से श्री वल्लभाचार्य कहते हैं कि ये तीनों प्रकार के लोगों का वर्णन है इधर। अस्तित्व में ब्रजवासी तीनों कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि वो तो कृष्ण के पार्षद है, लेकिन फिर भी वो इस जगत में जो तीन प्रकार के जो कर्मी सात्विक राजसिक तमसिक दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार की बातें वो भी कह रहे हैं। तो हो सकता है हमने तपस्या किया होगा, तपस्या के बल होते हमने अपने पुत्र को प्राप्त कर लिया जिसकी वजह से हम बहुत खुश है। अभी ब्रजवासी बहुत खुश है, वो सोच रहे हैं कि ये पूरा जो लीला भगवान ने रचाया है उनको मालूम नहीं भगवान की लीला है, वो सोचते हमारी तपस्या का बल है हमारी तपस्या का बल है जिस वजह से कृष्ण बच गए। यानी ये सोच रहे हैं कि हमने बड़े तपस्या के पिछले जन्म में इसलिए कृष्ण बच गया, इसलिए हमारा पुत्र बच गया। अब देखिए अगर इस जगत में अगर सोचा जाए इसी बात को तो इसको अहंकार माना जाता है। और कोई कहे मेरी तपस्या के कारण तुम बच गए, इसको अहंकार बोला जाता है। लेकिन उस रजवासी जब ये कहते हैं ये समझना चाहिए उनको कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, हमेशा वो सोचते हैं कि हमारा पिछला जन्म भी केवल कृष्ण के ही लिए ही था, जो भी हमारा अस्तित्व जो है हर चीज कृष्ण के लिए ही है, चाहे कर्म हो ज्ञान हो कुछ भी हो हमको सब नहीं मालूम, लेकिन बात ये है कि हमारा प्राण है कृष्ण, कृष्ण इज अवर लाइफ। तो ऐसा लगता है कि हमने पिछले जन्म में तपस्या किया था वो तपस्या की वजह से कृष्ण बच गया। नहीं, कुछ तो ने कहा नहीं 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 हमने पूर्तेष्ट प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है? हमने बहुत सारे सड़के बनाए थे, बहुत सारे कुएं खोदे थे, बहुत सारे पेड़ लगाए थे, इसके वजह से जन कल्याण के लिए हमने बहुत सारे कार्य किया था। तो जन कल्याण के लिए बहुत सारा कार्य किया था और कुछ लोगों को हमने दान दिया था। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य कहते हैं इधर ये जो उदर भूत सौरदम, सौरदम का अर्थ क्या है? जीवों की कल्याणकारी कार्य। कि जीवों के लिए कल्याणकारी कार्य भी दो प्रकार का होता है। एक होता है कि विशेष जीव के लिए होता है, तो उसको वो दान दिया जाता है। मान लिया आपने किसी को दान दिया, दान दिया तो क्या हुआ? किसको दान दिया? एक ही व्यक्ति को दान दिया। आपने सड़क बनाए तो किसके लिए है? वो सबके लिए है। यानी उसमें भी दो प्रकार के लोग हैं गर्मियों में जो इस प्रकार राजसिक कार्य करते हैं। कोई विशिष्ट जीव को दान देते हैं, वो थोड़ा सा निम्न प्रकार का कर्म माना जाता है। थोड़ा ऊंचा प्रकार का कर्म क्या है? राजसिक कर्म। वो ये सोचना कि परमात्मा का ज्ञान को ध्यान में रखते हुए सबके हृदय में परमात्मा है, इसलिए हम क्या करेंगे? हम ऐसा कार्य करेंगे जो सबको फायदा हो। यानी रजवासी जब इस बात को कह रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि इस जगत में जितने ही प्रकार के वैरायटी है, वैरायटी का अज्ञान, वो सब अज्ञान के द्वारा वो आवृत है, वो भी आवृत है। लेकिन वो पर्पस क्या है उस अज्ञान का, क्या उद्देश्य क्या है? वात्सल्य प्रेम को पुष्ट करना। इधर इस जगत में जो अज्ञान का आवरण क्या किस वजह से है, वो हमारे कृष्ण को बुलाने के लिए है। तो जो लोग बड़ा सड़क बनाता, रोड बनाता, सब कुछ बनाता है, इसकी वजह से उनका भौतिक जीवन में अच्छा हो सकता है, लेकिन बात यह है कि उससे उनको भक्ति प्राप्त नहीं होगा। असल में कृष्ण को भूलने की कार्य है सब चीजें। तो आगे प्रथम उदभूत सुहृदम, लोगों के प्रति कल्याणकारी कार्य हमें बहुत सारा किया था, इतना कार्य किया था कि उसके वजह से वो पुण्य कार्य हमने अर्जन किया था, वो पुण्य की वजह से हमारा कृष्ण बच गया, ऐसा लोग सोचते, ऐसा कुछ लोग सोच रहे हैं। और कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे, नहीं नहीं नहीं, ना तपस्या से ना पुण्य कार्य से सब नहीं हो सकता है। जब तक भगवान कुछ ऐसे कर्मी का लोगों को, भगवान की भक्ति किए बिना हमको अपना कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है। अच्छा करो अच्छा मिलेगा ही, तो भगवान को देना ही पड़ेगा। वो लोग सोचते हैं कि भगवान जो है कर्म के अधीन में है, तो ये एक प्रकार का ज्ञान है। तो ये अज्ञान को बोला जा रहा है अधोक्षजार्चितम, हमने क्या किया? अधोक्षज को अच्छा सा भक्ति किया, इसकी वजह से हमारी हमारे परिवार सुखी है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारी भक्ति अच्छा हो जाए तो हमारा परिवार सुखी हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम है जब आप भक्ति स्वीकार करते हो आपका परिवार और दुखी हो जाता है। हाँ, पहले भी दुख था लेकिन अभी तो ज्यादा बढ़ गया। अगर सुखी परिवार दुखी हो जाता है, मान लो कि एक परिवार भक्ति को स्वीकार किया, उनका लड़का आ गया मंदिर में ज्वाइन कर लिया, तो क्या होगा? दुखी हो जाएंगे कि नहीं? दुखों का ऐसा सोचना है कि नहीं, भक्ति हो जाए, प्रभु जी हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सब सुखी से जिए। जब कोई मेंबर है लाइफ में आते हमारे मंदिर में, आज हमारा जन्मदिन है, सब परिवार के साथ हम अभिषेक करना चाहते, फोटो निकालिए ताकि हम सब साथ में रहेंगे। उनको मालूम है कोई भी कभी भी गायब हो सकता है, डोंट नो। तो थोड़ा सा सात्विक विचार है, क्योंकि कर्म का फल को प्राप्त करने के लिए कृष्ण का अर्चना, कृष्ण अर्चना दोक्षम सहाय करेगा। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के रजवासी नंद महाराज के साथ में वो बोलने लगे, ऐसा हुआ होगा, नहीं हमने ऐसा किया, इससे हमने कृष्ण, लेकिन मुख्य बात यह था कि कृष्ण हमारा बच गया। हमने कृष्ण को प्रोटेक्शन दिया। वात्सल्य भक्त हमेशा सोचते हैं कि मेरे वजह से कृष्ण बचा। जैसे इस जगत में देखते हैं ना, माता पिता क्या सोचते हैं कि अच्छा पढ़ा लिखा किया ना, मेरे वजह से। माँ बोलती है मैंने खेला है ना, इसलिए बड़ा हुआ। कभी कभी ऐसा पिताजी बोल रहे हैं, गर्व से बोलते हैं, तो मेरे पुत्र हो ना इससे तुम पास हुआ, वो नहीं होता ना तुम कहीं का नहीं रह जाते। तो ये वात्सल्य की भावना में एक 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 बहुत विशेष रस है इस जगत में, हम दिखाई पड़ता है कि अगर कोई बच्चा बच जाता है या कुछ अच्छा कर देता है, कोई बड़ा हो जाता है, कोई अच्छा काम करता है, तो पिताजी क्या बोलते हैं, माता पिता क्या बोलते हैं, गर्व लेते हैं, हमारा बच्चा है ना। तो यही बात को, यही रस को कृष्ण आस्वादन कर रहे हैं। क्या आस्वादन करा रहे हैं? साधु सत्य न भयाद मुक्त धर्म आस्वादन। क्या आस्वादन करा रहे हैं हमको? दिष्ट्या स्वबंधून प्रणयन उपस्थिता। ब्रजवासी सोच रहे हैं वो कृष्ण वापस उपस्थित हो गए हमारे सामने, इसके वजह से किसके लिए उपस्थित हुए? हमको प्रसन्न करने के लिए। उनको मालूम नहीं है कृष्ण ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं, उनका एक ही काम है भक्तों को प्रसन्न करना। ऐसा नहीं कि वो अभी वापस आए अभी प्रसन्न कर रहे हैं। असल में कृष्ण का प्रत्येक कार्य क्या है? ब्रजवासियों को प्रसन्न करना है, उनको उनका वात्सल्य रस का आस्वादन कराना है। तो ब्रजवासियों का इस प्रकार का विचार जो है वो कुछ और नहीं है, कृष्ण ने क्या किया लीला के संपन्न करने के द्वारा वात्सल्य रस का आस्वादन कराया। खास करके जो हमने अभी चर्चा किया, क्या चर्चा किया? जैसे माता पिता बड़े गर्व का अनुभव करते हैं, मेरे वजह से कृष्ण बचा, अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं कृष्ण को क्या हो जाता। ये 100% बात है। इस जगत में अगर वात्सल्य रस मतलब वो हम देखते हैं, इसमें भी माता पिता सोचते हैं कि बच्चा मेरे वजह से ही वो है, सब कुछ है, और जो उसका अस्तित्व जो है वो मेरी वजह से, चाहे इस जन्म का पुण्य हो, इस जन्म में किए गए कार्य हो, या पिछले जन्म में किए गए कार्य हो, उसके वजह से ही ये बच्चा हमारा बचा है, मेरे वजह से मेरा बच्चा बच गया। वो अप्लाई करेंगे, दृष्टि देखेंगे तो ऐसे हमारा पुजारी है ये सोचते हैं, खरीदारी को बोलते हैं तो आज कैसे दिख रहे कृष्ण, शुक्रवार शनिवार रविवार को पूछेंगे कैसे हैं। उनका मन में क्या है? मेरे वजह से कृष्ण सुंदर है। अगर मैं नहीं करता ना, इफ आई डोंट डू एक प्रकार का वात्सल्य है। तो जैसे मान लो कि माता पिता में झगड़ा होता है, पिताजी कुछ करेंगे तो माँ बोलते आपको बच्चों को देखभाल करना नहीं आता, आप फल तो जाओ, मैं करूंगी तब ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के बातों के द्वारा ब्रजवासी एक प्रकार का कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। अच्छा नहीं 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 मैंने पिछले जन्म में रोड बनाए थे इसकी वजह से कृष्ण बच गया, उसका क्या संबंध है। लेकिन फिर भी एक आस्वादन, इट इज अ स्पेशलिटी ऑफ व्रज, व्रज प्रेम, दैट ये जो विशेषता है व्रज प्रेम का, कि कृष्ण के प्रत्येक लीला योग माया के द्वारा ऐसे संपन्न होता है, ताकि रसास्वादन वात्सल्य रस आस्वादन खास करके किशोरोत्तम होता है। तो ये इस श्लोक के बारे में जो भी हमने सोचा चर्चा किया है। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न नहीं कुछ? हाँ 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 सात्विक कर्म वो भी कर्म है, सात्विक कर्म एक तो कर्म है, इज इग्नोरेंस। सत्व रजस्तम ये तीनों क्या है? अज्ञान का प्रतीक है, ठीक है। तो ये जो सात्विक कर्म करने वाले भी कर्मी है, ठीक है। तो ये आवरण है, जैसे शुद्ध भक्ति का आवरण क्या है? ज्ञान कर्मा जनावृतम, यानी ज्ञान और कर्म आवरण है, ठीक है। वही वो भी कर्म कितने प्रकार का है? ज्ञान भी बहुत प्रकार का है, कर्म भी कितने प्रकार का है। इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के कर्म, अलग अलग प्रकार के ज्ञान, ये सब हमको हमारे चेतना के आवरण करता है, जिसके द्वारा हम कृष्ण को भूल सकते हैं। आवृत्तम ज्ञान में है तेना ज्ञान नो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन से, ये सब काम क्या अलग प्रतीक है, कर्म और ज्ञान काम का प्रतीक है। तो ये आवृत्तम जिसके द्वारा हम भूल जाते हैं, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन से, हम ऐसे डेमिगॉड क्वेश्चन, देवताओं क्वेश्चन प्रति हित ज्ञान सामस्थित हित ज्ञान प्रपद्यंते अन्य देवता, ज्ञान को चुराने वाली बात है। लेकिन वही चीज जब योग माया व्रजवासियों के ऊपर करती है तो किसके लिए है? वो भी कृष्ण को भुलाने की बात है, लेकिन किसके किस कारण क्या है? रसास्वादन, वात्सल्य रस का स्वादन। इधर भी कृष्ण को बुलाने के लिए, लेकिन किस बात के लिए है अमानु हमको एक्सपीरियंस हो रहा है। ये है डिस्टिंक्शन। तो साक्ष्य बोला इसको, ही टोल्ड साक्ष्य, बुक डिस्ट्रीब्यूशन साक्ष्य। अगर उनका इस प्रकार का अहंकार कि मैंने इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, अगर उसकी प्रस्तुतिकरण और उसका व्यवहार अगर किसी को अपराध नहीं करता है तो, और उसकी वजह से दूसरों को भक्ति में उत्साह मिलता है, वो साक्ष्य है। मैं ऐसा शुद्ध साक्ष्य नहीं जो अनुभव करते, लेकिन उसका थोड़ा सा एक आभा है। जैसे कहा गया है कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये अहंकार वास्तविक अहंकार, जैसे हनुमान ऐसे साधु होते हैं, कोई है मैं युद्ध करने वाला, मैं राम का दास हनुमान, आओ युद्ध करो। राम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त कृष्ण कृष्ण भक्ति द्वेष जने लोभ भक्त संगे कृष्ण कथा। हम लोग मोह कृष्ण की सुंदरता की मोहित हो जाना, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, मद, मद जो है कि मैं भगवान का दास हूं ऐसा सोच के गर्वित हो जाना। लेकिन वो अहंकार अगर उसकी वजह से आप अपराध कर रहे हो, भले ही आपने दिव्य कार्य किया, लेकिन कार्य के करने के पीछे चेतना जो थी वो बद थी, इसने आपको जरूर आध्यात्मिक फायदा होगा, साथ साथ में थोड़ा दुख भी मिलेगा। कुछ भक्त होते प्रभु जी इतना भक्ति करते कि साधु दुखी क्यों है, क्योंकि अपराध अफेंसलेस, अफेंसलेस प्राइड इज गुड, नो प्रॉब्लम, अफेंसलेस। तो अगर भक्त बहुत केयरफुली अफेंस यानी ये जो अपराधों को अपराध किए बिना अगर वो इस प्रकार का वो नो प्रॉब्लम। अगर वो योग माया नहीं करती तो उनका आश्वासन नहीं हो पाता। आध्यात्मिक जगत में होता क्या है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विथा विस्ताविन्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य किलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। आध्यात्मिक जगत में क्या हो रहा है, रसात्मतया अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण, अखिल मतलब हर प्रकार के रसों का आधार है कृष्ण, तो ब्रजवासियों को ये रसास्वादन करा रहे हैं। अगर उस प्रकार का रसास्वादन कराना है तो कुछ चीजों को याद रखना होगा, कुछ चीजों को भूलना होगा, ठीक है नहीं। अगर ईश्वर को मालूम पड़ा कृष्ण का विराट स्वरूप ने दिखाया अर्जुन को और ये भगवान है तो दूध पिलाएगी नहीं, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि यशोदा को कृष्ण भगवान है करके मालूम नहीं है, है लेकिन वो उस समय के लिए वो कृष्ण उसको भज, ये अर्जुन भगवान, अगर अर्जुन को भगवद गीता सुनाना होता तो अर्जुन को मोहित करना ही पड़ेगा, तभी तो वो ऐसा प्रश्न पूछेगा, तभी तो भगवान जवाब दे पाएगा, तभी तो आपको भगवद गीता मिलेगा। ये वो प्रसाद क्या है, वो गुरु कृष्ण प्रसाद क्या है, जाने अनजाने में भगवान या भक्त का किया गया सेवा वो भक्ति है क्या। तो इसलिए भक्ति प्रदाता सुकृति बोला जाता है इसको, तो इससे भक्ति से भक्ति आता है। और वैसे मान लो कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया, सब लोग फ्री में रह सकते हैं, फ्री में खाना मिलता है, सब कुछ है, इतना करने के बाद भी उनको उनको भक्ति नहीं मिलता। लेकिन एक शराब पी के आया होगा, पता नहीं देखा क्या चल रहा है इधर, चलो जाए मंदिर इधर, उसको मालूम नहीं क्या है, रास्ते एक पत्थर था, ईंट था, उसको फेंका, वो गिर पड़ा, अरे कहाँ से आया, सब लोग भाग रहे। अगला दिन क्या किया, कोई वर्कर था उसने देखा ईंट है, अच्छा चलो लगा देते, वो उसको मिलेगा मंदिर में पत्थर मारने से बच नहीं मिलता है, आप बड़ा बड़ा पत्थर मारते बांध तो भी नहीं मिलता है। समझे ना, वो अनजाने में किया, जाने अनजाने में किया, भगवान है भक्त की सेवा है कि नहीं, कि मैं संडे को आ रहा था प्रोग्राम में आया, संडे फीस में जब आपको मालूम है पूरा भूत प्रेत नाचते एक तो मतलब एक रहे, मैं बहुत गुस्सा आया, एक एक लड़का है इधर का पीछे कहीं रहता होगा, वो दोनों झगड़ा कर रहे थे, एक लेके क्या पत्थर मार, तो एक ने क्या किया, ईंट किया उस दूसरे लड़के को मारने के, इधर ही ईंट चल रहा है, तो ईंट लगा ऐसा मारा तो उससे किसी ने रोका उसको, क्या किया वो ईंट को उसने क्या किया, वो मंदिर का जो नहीं है ना वो साइड का दीवार उसके ऊपर रखा, उसके ऊपर रखा उसने, वैसे तो उधर जाने वाला था ईंट, और इसने क्या किया वो खुद, तो उससे कितना पुण्य मिलता उसको, कौन सा पुण्य है, भक्ति प्रदात सुकृति, किसी ना किसी तरीके से भक्ति से भगवान से जुड़ा है तो उसको कभी भी नुकसान नहीं होगा। भक्ति प्रदात सुकृति तीन प्रकार का है, मुक्ति प्रदात सुकृति, भुक्ति प्रदात सुकृति और भक्ति प्रदात सुकृति, ठीक है। हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।